नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम भूटान के प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तोबगे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने आपत्तिजनक सामग्रियों वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद किए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नागरिक संशोधन अधिनियम किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। और बर्मिंघम में पीवी सिंधु आज इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में दक्षिण कोरिया की एन से यंग के साथ खेलेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 1,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को योजना के अंतर्गत ऋण वितरित करेंगे, जिनमें दिल्ली के 5,000 रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। एक रिपोर्ट।
ये कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर होंगे, जिनकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक होगी। प्रस्तावित गलियारों से कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात सुगम होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर पर स्टेशनों में लाजपत नगर, एंड्रयूजगंज, ग्रेटर कैलाश 1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत जिला केंद्र, पुष्प विहार और साकेत जी ब्लॉक शामिल होंगे। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के स्टेशनों में इंद्रलोक, दयाबस्ती, सराय रोहिला, अजमल खान पार्क, नबी करीम, नई दिल्ली, एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय और इंद्रप्रस्थ शामिल होंगे। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
भूटान के प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तोबगे आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद श्री तोबगे की ये पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री तोबगे मुंबई भी जाएंगे। भारत और भूटान के बीच सभी स्तरों पर विश्वास, भलाई और आपसी सूझबूझ पर आधारित अनुकरणीय, मैत्रीपूर्ण और सहयोग संबंध हैं। श्री तोबगे की इस यात्रा से दोनों देशों की अपनी विशेष साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान भारत और भूटान के बीच मैत्री और सहयोग को और प्रगाढ़ करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद कर दिए हैं। इनमें ड्रीम फिल्म्स, हंटर्स, हॉटशॉट, वीआईपी, प्राइम प्ले और अनकट अड्डा शामिल हैं। इन मंचों के साथ जुड़े 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया खातों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक रिपोर्ट।
यह निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन मंचों की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि ये मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करें। मंत्रालय ने कहा कि इन मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों में अधिकतर अंश अश्लील और महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने वाले पाए गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये रिपोर्ट सौंपी। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने के बाद इस समिति ने देशभर में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए 2 चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है। एक रिपोर्ट।
इस उच्च स्तरीय समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था और इसके गठन के बाद से ही यह समिति लगातार राजनीतिक दल, विशेषज्ञों और आम नागरिकों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर रही थी। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव दिए, जिनमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया। इसके अलावा आम नागरिकों से 21,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई और लगभग 80% लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। औद्योगिक संगठन CII, फिक्की और SOCHM जैसे व्यापारी संगठनों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सभी के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद 191 दिनों में तैयार की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के उत्साह को चित्रित करने वाला एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया एक्स पर श्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि पूरे देश के युवा मतदाता कह रहे हैं, मेरा पहला वोट देश के लिए। प्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में नवनिर्वाचित सदस्य सुधा मूर्ति को शपथ दिलाई। इस मौके पर इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध शिक्षिका, लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया था। कराईकल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य श्री PRN थिरुमरन ने आज पुद्दुचेरी में मंत्री पद की शपथ ली है। उपराज्यपाल डॉ तमिलीसाई सुंदर राजन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कल करनाल विधानसभा सीट से त्याग पत्र दे दिया। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को सिरसा से टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जारी सूची के अनुसार कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर से, सुशील कुमार रिंकू जालंधर से और गुरमीत सिंह खुदियां भटिंडा लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पंजीकरण कराने वाले मतदाताओं की संख्या में 11 लाख की वृद्धि हुई है। ये मतदाता विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान करेंगे। 2023 में चलाए गए मतदाता संशोधन अभियान के कारण 1 जनवरी 2024 तक मतदाताओं की संख्या 86 लाख से अधिक हो गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
भाई वाह, तुम्हारी ये लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। घर में आए नहीं कि सब खत्म हो जाते हैं।
धन्यवाद। और हाँ, भारत सरकार की मदद से मैंने अपना ये फूड प्रोसेसिंग का काम भी बढ़ा लिया है। अब लड्डू के साथ साथ नमकीन, खाकरा, बनी बनाई रोटियाँ और कई प्रकार की चटनियाँ भी बनाने लगा हूँ। और अपने जिले में ही नहीं, सभी बड़े शहरों तक पहुँचा रहा हूँ।
वो कैसे?
फूड प्रोसेसिंग की समृद्धि मोदी जी की गारंटी से, जिससे PMFME स्कीम के तहत मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। और मैंने अपने साथ साथ कई और खाद्य उद्यमियों को भी जोड़ लिया है।
अपना खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्यम शुरू करने या पढ़ाने के लिए आज ही आवेदन pmfme.mofpi.gov.in पर करें या 9254997101 एंड 9254997102 पर कॉल करें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी के समान अधिकार होंगे, क्योंकि अब वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे।
CAA के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं कर, इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है।
श्री शाह ने कहा कि उन्हें भारत के नागरिकों की तरह नागरिकता सूची में शामिल किया जाएगा और वो चुनाव लड़ सकेंगे तथा सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकेंगे। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC का CAA से कोई संबंध नहीं है। श्री शाह ने कहा कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है।
जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। सब लोग एप्लीकेशन करें, मैं सबको अपील करता हूं, ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है, आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है।
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने घरेलू तथा विश्व में वैज्ञानिक उपलब्धियों में भारत की भूमिका की सराहना की है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरमा के एक दशक की शीर्षक की रिपोर्ट जारी करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान और आदित्य L1 जैसी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमता की बात कही। पश्चिम बंगाल में निलंबित टीएमसी नेता और मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को संदेश घाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला करने के मामले में आज बशीरहाट न्यायालय में पेश किया गया। शेख शाहजहां 10 मार्च से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की हिरासत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा दिखाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक शीर्षक के वृत्तचित्र के एक एपिसोड को साझा किया। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शानदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आधारित इस एपिसोड को देखना एक अद्भुत अनुभव होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु का सामना दक्षिण कोरिया की आन से यंग से होगा। महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टर की जोड़ी का मैच चीन की झेंग यू और झांग शुशियान से होगा। आज विश्व किडनी दिवस है। इस वर्ष किडनी दिवस का विषय है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। एम्स नई दिल्ली के किडनी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर दीपांकर भौमिक ने हमसे बातचीत में कहा कि लोगों को किडनी की बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का सुझाव दिया।
जब 50% किडनी खराब हो चुके होते हैं तब जाके पैरों में सूजन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हीमोग्लोबिन कम होना, हड्डियों कमजोर होना, रात में बार बार उठना, ये 5-6 लक्षण है जिससे पता चलेगा कि हो सकता है गुर्दे में प्रॉब्लम है। लेकिन इसका पक्का निदान तभी होगा जब आप पेशाब का और खून का जांच, बहुत जरूरी है कि प्रिवेंशन किया जाए। इसीलिए वेट नियंत्रण में रखना चाहिए, 18 से 23 BMI वही बेस्ट है। खानपान का नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज करें, चीनी कम खाएं ताकि मोटापा ना हो, नमक कम लें हमेशा, पानी ज्यादा पिए, कम से कम 2 लीटर पेशाब होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिख नव वर्ष के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वाहेगुरु की असीम अनुकंपा से सभी के कल्याण और समृद्धि की कामना की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने 10 विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है। नई नीति के अनुसार प्रशासन स्टार्टअप से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच नेटवर्किंग गतिविधियों में तालमेल के लिए JKEDI में तकनीकी समर्थन इकाई बनाएगा। नई दिल्ली में रूस के दूतावास ने आज विश्व युवा महोत्सव के भारतीय प्रतिभागियों के लिए समारोह आयोजित किया। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च के दौरान रूस की सीरियस फेडरल टेरिटरी सोची में आयोजित किया गया था। समारोह की अध्यक्षता रूस के राजदूत डेनिस आलिपोव ने की। इस दौरान भारतीय प्रतिभागियों ने महोत्सव के बारे में विचार और अनुभव साझा किये। ओडिशा के INS चिल्का पर कल अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये पासिंग आउट परेड महिला अग्निवीरों सहित लगभग 2600 अग्निवीरों के कठिन प्रशिक्षण के सफल समापन को दर्शाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों को डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता वितरित करते हुए ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम भूटान के प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तोबगे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने आपत्तिजनक सामग्रियों वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म बंद किए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। और बर्मिंघम में पीवी सिंधु आज इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में दक्षिण कोरिया की एन से यंग के साथ खेलेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।